सब सुनेंगे इंशाल्लाह, आप तो आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। सिर्फ मैं चाहूंगी कि आप आराम और तसल्ली से सुने। मैं कोशिश करूंगी, मैं आपको साइंटिफिक वे में भी इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, और कितनी गुंजाइश बनती है अल्लाह मुझे भी सही बताने की तौफीक दे, मैं उसको आपके सामने इंशाल्लाह रख दूं। अगर आप एक्सप्लिसिट वे में दो टोक बात करें, तो यह हकीकत है कि इस इशू को सबको समझना चाहिए। हर पढ़े लिखे मुसलमान को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और क्लैरिटी आपको आगे बात पहुंचाने में फायदा दे। क्लैरिटी आपको किसी एक इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ फायदा दे दे। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सो हमारा इस वक्त सिनेरियो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं सारी बात से पहले भी बोलूं कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता है, सो मेरा नहीं ख्याल यहाँ किसी का हाथ उठेगा। उठना भी होगा तो मेजॉरिटी इम्पैक्ट्स, कोई डर के मारे भी नहीं उठाएगा। इट्स ओके, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे अंदाजा है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और अहादीस से जुड़े हुए लोग, सिराते मुस्तकीम पर दौड़ने वाले लोग, उनको किसी किस्म का डाउट नहीं है इस बात पे कि कुरान ने कुछ वो गुनाह जिनको वाज़े तौर पर गुनाह करार दिया है, नो ग्रे एरिया, ब्लैक एंड वाइट गुनाह हैं, उन्हीं में से एक होमोसेक्सुअलिटी आता है, उसमें किसी को अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं है। अगर मैं गुनाहों की बात कर रही हूं, सो होमोसेक्सुअलिटी तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। एंगेजिंग इन सेक्सुअल रिलेशनशिप, इंटरकोर्स जिसको आप बोलते हैं, आउटसाइड द मैरिज, ये हराम है, किसी को इस पे डाउट है? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होते हुए हम में से किसी को डाउट नहीं है कि आपका जो जिस्मानी ताल्लुक होता है औरत और मर्द का, वो निकाह के दायरे के बाहर बिल्कुल अलाउ नहीं है, कबीरा गुनाह है। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, प्री मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, इसकी कोई गुंजाइश है इस्लाम में? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्या हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम कहें कि एक्स्ट्रा मैरिटल और प्री मैरिटल अफेयर्स इस्लाम में हराम है? एक बैलेंस एटीट्यूड मुसलमानों का होना चाहिए। सॉफ्ट इमेज देते देते इतना मत डर जाएं कि आपके मुंह से हराम का लफ्ज ही ना निकले। हर चीज को आप और मैं हराम करार नहीं दे सकते। मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है किसी ऐसे अमल को हराम करार देने की जिसको शरीयत ने हराम नहीं करार दिया, लेकिन जिसको शरीयत ने ब्लैक एंड वाइट वे में हराम करार दिया है, मैं अपना दुनिया को सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए हराम के लफ्ज से क्यों डरूं? ये कन्विक्शन आपके अंदर आना चाहिए। हम हिकमत ढूंढने की तलाश में कन्विक्शन खो देते हैं, और जब हम हिकमत की तलाश में निकलते हैं और हम कन्विक्शन को एक कोने में सोफे पर बिठा देते हैं, तो फिर हमारा मुसलमान होने का कॉन्फिडेंस भी उस तरह से नजर नहीं आता। आपसे बात की जाती है आपको कन्विक्शन देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, ताकि आपकी तरबियत हो जाए। सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको आप इंटरकोर्स बोलते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप निकाह के दायरे के बाहर मर्द और औरत के दरमियान में हराम है। सिंपल। मैं सिर्फ अगर मर्द और औरत के अंदर भी ताल्लुकात के ऊपर बात करूं, और वो किस हद तक, कहां से शुरू होते हैं और कहां तक पहुंचते हैं, मैं सिर्फ आपको वार्न करने के लिए कह रही हूं। आई एम श्योर आप में से बहुत सी खवातीन को पता है, कराची शहर के अंदर जो कुछ हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बीवियों को भी आंखें खोलने की जरूरत है और माओं को भी आंखें खोलने की जरूरत है हर एंगल से। मर्दों के पार्लर्स के अंदर पेडिक्योर करने वाली औरतें हैं, मालूम है ना आप लोगों को? अगर आपके पाँव में मैं पेडिक्योर करना शुरू कर दूं, एक औरत औरत का करिए ना, आपको और मुझे भी गुदगुदी शुरू हो जाती है। करवाते हैं ना आप लोग जाके, कितनी अच्छी और रिलैक्सेशन वाली फीलिंग्स आती हैं। आप सोचें, मर्द बैठा हुआ पेडिक्योर कराने के लिए और औरत उसके पाँव में जो है वो मसाज कर रही है, और फिर जो कहानियां सामने आ रही हैं, खुद बीवियां बता रही हैं, मैं थोड़ी पार्लर में जाके बैठ रही हूँ या मुझे पता चल रही हैं कहानियां, जो मुझे लोग बताते हैं मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद जो अफेयर्स चलते हैं, और फिर अफेयर्स कहां तक पहुंचते हैं। सो सब चीजों को अंडर द कारपेट करने की भी जरूरत नहीं है। आंखें खोलें, आंखें खोलें। शौहर की तरबियत हम नहीं कर सकते, यह हकीकत है, मगर अल्लाह से मांगें वो दुआ का एंगल, वो तड़प कि अल्लाह हमारे घर वालों को सीधे रास्ते पे रखे, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो वालिद हो, कोई भी हो। और अपने लिए भी सीधे रास्ते की अल्लाह से मदद मांगी है। आसान नहीं होता है। ठंडी क्लास में बैठकर कुरान सुनकर नोट्स बना लेना इज द इजीएस्ट थिंग। आइए जरा प्रैक्टिकल लाइफ में और फिर देखिए कि कितने चैलेंजेस हैं। हैं चैलेंजेस बाहर। बहरहाल इस चीज को भी वाजे करने की जरूरत है और कम से कम आपकी जुबान से ये बात जब कोई आपसे पूछे तो बिल्कुल दो टोक आनी चाहिए कि निकाह के दायरे के बाहर इस चीज की इजाजत नहीं है। जब ये एक बड़ी तादाद थी उलमा की, मैं इस पर नहीं बहस कर रही कि वो सही किया या गलत किया, इसीलिए वो कॉन्ट्रोसेप्टिव्स के खिलाफ होते थे कि कॉन्ट्रोसेप्टिव्स का बेदरेग इस्तेमाल माशरे को कहां लेकर जाएगा। और आज माशरा वहां खड़ा हुआ है, उस जगह पर माशरा आके खड़ा हो चुका है। जब मर्द और औरत के सेक्सुअल रिलेशनशिप की, इंटरकोर्स की निकाह के दायरे के बाहर इजाजत नहीं है, तो एक मुसलमान मुसलमान होते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह कहते हुए ये कैसे सोच सकता है कि सेम सेक्स इंटरकोर्स एथिकल है या अलाउड है? खुद ही इंसान, पढ़ा लिखा इंसान अगर सोचेगा, बहुत से लोग कहते हैं इट्स मॉरली करेक्ट। आप लोगों को भी बहुत सी दलीलें सुनने को और पढ़ने को मिल जाती होंगी। स्कॉलर्स ने कहा है कि अगर ये अमल होमोसेक्सुअलिटी का अगर जिना से ज्यादा नहीं है, ऑल दो इसके बहुत से फैक्टर्स और दलीलें मौजूद हैं कि ये जिना से बढ़कर है, वो कहते हैं अगर लेट्स से जिना से ज्यादा नहीं है तो एटलीस्ट जिना के बराबर तो जरूर गुना है। वरना दलाइल इतने मौजूद हैं कि अगर आप इसके बारे में हुदूद और ताजीरात की बहस को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि यह जिना से भी कई दर्जे बढ़कर गुना है अल्लाह की नजर में। आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री को, इस्लामिक साइंसेस को स्टडी करें तो आपको 1450 साल में कोई भी आलिम होमोसेक्सुअलिटी को जस्टिफाई करता हुआ नजर नहीं आता। और लूत अलैहि सलाम की कहानी ने इस गुनाह को, इस अमल को इमोरल कंप्लीटली वाजे किया है। और ये कुरान के अल्फाज हैं, उसके बाद आप अहादीस पर जाते हैं। अल्लाह की नजर में इस अमल की क्या हैसियत है? कुरान 9 मकामात पर कम से कम उसको वाजे करता है। कौम लूत के बहुत से गुनाहों में से प्रीडोमिनेंट क्राइम होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स रिलेशनशिप, चाहे मर्द का मर्द से हो या औरत का औरत से हो, होमोसेक्सुअलिटी में दोनों आ जाते हैं। बाज लोगों ने यहां तक कहा, जब इस पर इतनी बहस है और आपको पता है हर दूसरा मुल्क इसके ऊपर कानून पास करने की उसके अंदर है इस वक्त पोजीशन में, बाज लोगों ने कहा जो कुरान बात करता है होमोसेक्सुअलिटी की या लूत अलैहि सलाम का जो किस्सा आया है वो फिगरेटिव है, समझाने के लिए बात की गई है। आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को समझने वाले हैं। कुरान की जुबान एक्सप्लिसिट है, वाजे है, क्लियर है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि इस गुनाह की कोई गुंजाइश बनती नहीं और ये फिगरेटिव कहानी नहीं है। फैक्ट है, हिस्ट्री में इसके दलाइल मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक कंसेंसस आपको स्कॉलर्स का यूनानिमस नजर आता है कि वो इस अमल के खिलाफ रहे हैं हमेशा और इसको गुनाह करार दिया है। कौम लूत के अंदर ये गुनाह अपने उरूज पर पहुंच चुका था। कितने साल लूत अलैहि सलाम इस कौम में रहे थे? मैंने बताया था शायद पिछली क्लास में, बताया था 30 ईयर्स, तकरीबन 30 साल का अरसा आता है इस कौम के लिए। आता है कि ना सिर्फ ये कौम इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली, यानी कि कौम की मेजॉरिटी ऑलमोस्ट सभी इस गुनाह में इतना इन्वॉल्व थे कि वो इस अमल को करते हुए प्राउड फील किया करते थे। आज भी जो होमोसेक्सुअलिटी की सपोर्ट में बोलते हैं, कभी आपने उनका कॉन्फिडेंस देखा? कभी उनका कॉन्फिडेंस आप देखिए, किस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं? तमाम अंबिया की तरह लूत अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जब इस इलाके में भेजा तो आपने लूत अलैहि सलाम ने तबलीग करनी शुरू कर दी, उनको एक अल्लाह की तरफ दावत देनी शुरू कर दी। हालांकि मर्ज था लोगों में, जब लूत अलैहि सलाम पहुंचे थे तब भी लोग पॉकेट्स में इन कामों में इन्वॉल्व थे। कहा जाता है 30 साल में ये अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था। लूत अलैहि सलाम इस माशरे में आए और नया माशरा था आपके लिए, नए लोग थे, नई कम्युनिटी थी। लूत अलैहि सलाम ने यहां पर तबलीग शुरू कर दी। हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में, आपको बताया था कि एक मुसलमान की जिंदगी के दो ही एस्पेक्ट होते हैं, जो उसका मेन विजन होते हैं और बाकी उसके छोटे छोटे जो मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं वो वक्त और उम्र के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। दो ही स्ट्रांग एस्पेक्ट एक मुसलमान की जिंदगी में होने चाहिए जब से उसको होश आए तब तक जब तक उसको मौत ना आए। दीन इन मी, और दूसरा क्या बताया था, दीन आउटसाइड। जितना मैं अपने अंदर दीन को ला सकती हूँ समझ और अमल के एतबार से, और जितना मैं उस इल्म को आगे पहुंचा सकती हूँ। तमाम अंबिया की जिंदगी में आपको ये दो एस्पेक्ट स्ट्रांग नजर आते हैं। पैराडॉक्स नजर नहीं आता कि बस अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने वाले माशरे से बेखबर, ना दूसरा एंगल, सिर्फ दावत और तबलीग करने वाले अपनी इबादत, अपने तस्किए की और अपनी ग्रूमिंग की कोई परवाह नहीं, अपनी स्पिरिचुअलिटी की कोई परवाह नहीं। अंबिया में बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है, अपने आप को अल्लाह से जोड़ने वाले, अमल में आगे बढ़ने वाले और लोगों को अल्लाह के रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश करने वाले। लूत अलैहिस्सलाम भी सुद्दूम के इलाके के अंदर आए और उनको अल्लाह की तरफ पलटने की दावत दी। सूरत शुअरा आयत नंबर 160 से लेकर 164 तक आपको दावत का इनिशियल अंदाज नजर आता है। कज़्ज़बत क़ौम लूतिल मुरसलीन, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भेजे हुओं को झुटलाया। मैं आपको इसका उसूल बता चुकी हूं कि अल मुरसलीन क्यों आया है। लूत अलैहिस्सलाम तो इस कौम में एक ही रसूल थे, दो रसूल एट ए टाइम तो मौजूद नहीं थे, तो फिर यहां जमा क्यों आया है मुरसलीन? इसलिए कि एक रसूल को, एक नबी को झुटलाना विल बी इक्वल टू कि आपने सबको झुटला दिया। ये उसूल अपना याद रखिएगा जो आपको कुरान की जुबान में मिलता है। इस कौला लहुम अखूहुम लूतुन अला तत्तकून, लूत अलैहिस्सलाम की दावत का इनिशियल अंदाज अपनी कौम को समझाया कि क्या तुम अल्लाह का तक्वा नहीं करोगे? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ एक अमानतदार रसूल हूं। फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो। व अतीउनी, और मेरी इताअत करो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं तुमसे कोई रिवॉर्ड नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। इन आयात के लिए, और खासतौर पर ये जो आखिरी आयत 164 आपके सामने सूरह शुअरा की मैंने पढ़ी है, इसके लिए मुफस्सरीन लिखते हैं कि अंबिया और अंबिया के रास्ते पर चलने वालों की सुन्नत यही होती है, सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों का फ्रेम ऑफ माइंड। उनको दावत के बदले में कोई दुनियावी फायदा नहीं चाहिए होता। आप लोगों को अच्छी बात बताएंगी किस लालच में? वो जो दो काम आपकी जिंदगी का मकसद हैं, बस वो दूसरा मकसद पूरा करने के लिए, दीन मुझ में आ जाए और जिस चीज को मैंने बेहतर महसूस किया है मैं उसको आगे फिल्टर डाउन कर दूं, दैट्स इट। यह है अंबिया का फ्रेम ऑफ माइंड और अंबिया के रास्ते पर चलने वालों का फ्रेम ऑफ माइंड। सिर्फ एहसान की रविश पर चलते हुए लोगों को दावत और तबलीग का काम करना किसी मटीरियलिस्टिक फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए नहीं, इसलिए कि अजर सिर्फ अल्लाह से चाहिए। लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही कहा। अच्छा ये बताएं, आप पर और मुझ पर तो लोग शक कर सकते हैं कि हो सकता है अपने किसी पर्सनल ग्लोरी के लिए दीन का काम कर रहे हैं। अंबिया को क्यों नौबत आती थी? वो तो अपने माशरे का एक बेहतरीन किरदार की शख्सियत का इंसान होते थे, आप सिफातुल अंबिया पढ़ चुके हैं, फिर क्यों नौबत आती थी अंबिया को क्लैरिफिकेशन देने की? क्या आता है आपके जहन में, कोई बताएगा? कोई एक हाथ खड़ा करके बताइए, शबनम ऊंची आवाज में। जिनको ओबे नहीं करना होता, उनको सिर्फ इल्जाम लगाने होते हैं, वो फिर सिर्फ जब वो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को एज अ होल गलत साबित नहीं कर सकते तो वो करेक्टर असैसिनेशन करते हैं। माशरा एक तरफ जा रहा होता था और वो माशरे के एंटरटेनमेंट की और फायदे की और उनकी एंजॉयमेंट की बातें होती थी। अंबिया जब आते थे तो उस रास्ते से रोककर एक दूसरा सिंपलिस्टिक रास्ता इख्तियार करने की दावत देते थे, और किसी को भी अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट छोड़ना अच्छा नहीं लगता। इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकती हैं, जहां भी आप लोगों को बिदात से रोकेंगी, जहां भी आप लोगों को रिवाजी समाजी कल्चरल चीजों से रोकेंगी और उसके मुकाबले में आप कहेंगी देन लेकर आइए, जहां भी आप लोगों को गुनाहों से रोकेंगी नेकी की तरफ लाने के लिए, सब सूरत हाल में यही वजह होगी कि लोग आपका इनकार करेंगे कि उनको अपनी इंजॉयमेंट, अपनी खुशियां, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना होता। वेरी वैलिड पॉइंट। सुलूत अलैहिस्सलाम ने, अंबिया ने भी ये जुमले इस्तेमाल किए, अल्लाह ताला ने उनको गाइडेंस दी। अंबिया को जरूरत इसलिए पड़ती थी कि उनको ब्लेम किया जाता था कि शायद ये अपने किसी दुनियावी फायदे के लिए हमसे ये बातें कर रहे हैं ताकि हम इनकी बात माने और फिर इनको इनामात दें। ऑब्वियसली लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके फलस्तीन से इस इलाके में आए थे, और आपको मालूम है कि बिजनेस हब था ये इलाका, ट्रेड होती थी यहाँ पे। सो जो जिस जहनियत का होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। उनको ये महसूस होता था कि लूत यहाँ पर अपने फायदे के लिए आए हैं, दुनियावी फायदे के लिए, जिस पर लूत अलैहिस्सलाम को ये अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है, मुझे कोई वर्ल्डली गेन नहीं चाहिए। क्या आज अल्लाह के रास्ते पर मेहनत करने वालों को इस तरह के एलिगेशंस का सामना करना पड़ता है? अल्लाह के बंदों के ऊपर किताबें लिख दी जाती हैं, ये तो हैं यहूदी एजेंट। इट्स सो इजी कि आप किसी की इज्जत को एक मिनट में पानी में मिला दें ये कह के कि यहूदी एजेंट है। लेकिन किसी के कहने से ना तो कोई यहूदी एजेंट बनता है और ना किसी के कहने से किसी की इज्जत में कमी आती है। जब आप अपने खानदानों में और अपने सोशल सर्कल में और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में अल्लाह के दीन की अलमबरदार बनेंगी तो याद रखिएगा आप पर भी ऐसी एलिगेशंस लगेंगी। बाज़ोकात आप पर बहुत सोफिस्टिकेटेड एलिगेशंस लगती हैं। हाँ, जैसे राहिला बोल रही हैं आप वहाबी हो गई हैं। मुबारक हो, वेलकम टू द क्लब। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें मुसलमान कर दे, असल चीज़ ये है। मगर ये कि इस तरह से जब आप दीन के लिए आगे बढ़ते हैं एलिगेशंस लगती हैं, हर एलिगेशन का जवाब नहीं दिया जाता, याद रखिएगा ये बात। जहां मौका महल हो, कम से कम मुनासिब अल्फाज में और अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल रखते हुए, और चेहरे पे क्या रखते हुए साथ साथ, मुस्कुराहट। आपके हाथ में 8 कैप्सूल्स हो, अल्लाह ना करे आपको खाने पड़े, बस इमेजिन करें आपके हाथ में 8 कैप्सूल्स हैं और आपसे कहा जाता है चलिए खाइए और पानी नहीं देते आपको, खा सकती हैं? खा ही नहीं सकती 8 कैप्सूल्स। आप किसी को इतनी सख्त बात कहने जा रही हैं, इस बिल्कुल ये मिसाल फिट कर लिया करें जब आप किसी को उसकी गलती से रोकना चाह रही होती हैं, सो उस वक्त आपको वो जो 8 कैप्सूल्स उसको सॉलो करवाने हैं उसके लिए पानी का काम आपकी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट करती है। बहरहाल ये करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको और मुझे जब लोगों को बुराइयों से रोकना है तो लोग आगे से रिटेलिएट करेंगे, एलिगेशंस लगेंगे, बिल्कुल जैसे अंबिया के ऊपर एलिगेशंस लगे। आज भी अगर कोई मुल्क, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इदारा, अगर कोई इंसान होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बात करने खड़ा होता है और वो कितने ही डिसेंट अंदाज में, वो कितने ही लॉजिकल अंदाज में, वो कितने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में इस्लाम की बात को सामने रखेगा, तब भी उस पर एलिगेशंस लगेंगे। इसलिए कि कोई अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता है, कोई भी अपने आप को अपनी एंटरटेनमेंट से दूर नहीं करना चाहता है। ऐसे में मुसलमानों को अपने दीन पर जम कर रहना बहुत जरूरी है। सामने वाले का कॉन्फिडेंस, सामने वाले के गुनाह का कॉन्फिडेंस आपके ईमान के कॉन्फिडेंस को शैटर ना कर दे, इसकी हमेशा दुआ किया करें। सामने वाले की गलतियां और उन गलतियों का कॉन्फिडेंस आपके ईमान और आपकी नेकियों के कॉन्फिडेंस को हिला ना दे। बहुत सख्त इस वक्त मुसलमानों को इस चीज़ की ज़रूरत है। अंबिया भी यही करते थे, अंबिया को मालूम होता था कि सामने से तारीफ आती है तो भी अल्लाह की तरफ से, सामने से एलिगेशन आता है तो भी अल्लाह की तरफ से, और अगर अजर चाहिए मेहनतों का, आप जितना थक रही हैं, थकता तो है ना इंसान, अल्लाह करे कि अल्लाह हमें अल्लाह अपने रास्ते पे थकने वालों में शामिल कर ले, अल्लाह ना करे कि हम दुनिया पर थकने वाले हों, दुनिया की मोहब्बत पर थकने वाले हों, अल्लाह हमें इबादत में थकने वाला बनाए और हमारी थकन को कबूल फरमाए। ये अल्लाह की नज़र में बंदों की मुबारक थकन है, इसलिए कि आमिला तो नासिबा की कैटेगरी में फिर नहीं आता इंसान, फिर इंसान की थकन अल्लाह को महबूब हो जाती है, इसलिए कि वो अल्लाह के रास्ते में खुलूस के साथ मेहनत कर रहा है। तो जब आप थकेंगी, थकन तो उसको होगी, सर भारी होगा, हो सकता है क्लास में बैठे बैठे आंखों के शटर गिर जाएं। आंखों के शटर गिरते? मेरे तो बहुत गिरते हैं। एक दुकान के शटर होते हैं, एक आंखों के शटर होते हैं, और इसका एक्सपीरियंस मुझे ज्यादातर रमजान में होता है। इतनी नींद आ रही होती है, चाय भी नहीं पी सकते, कॉफी भी नहीं पी सकते, इतनी नींद आती है, फिर मैं सिर्फ सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा वॉक करके फिर आके बैठ जाती हूँ, फिर वॉक करती हूँ फिर आके बैठ जाती हूँ, दैट्स इट। अच्छा, मैं मुंह गीला कर लूँ तो फिर मुझे और नींद आने लग जाती है। सिर्फ एक सोच कि अल्लाह मैं किसके लिए थक रही हूँ, बस आपके लिए, अल्लाह आप कबूल कर लें। जितनी आपकी नेमतें हैं उतना हम हक अदा करने की ताकत नहीं रखते। ये चीज़ अपने अंदर डिवेलप कीजिए, इंशाल्लाह आप अपने आप को लोगों की ओपिनियन से ऊपर उठा लेंगे। आप लोगों के हकूक अदा करेंगी, लेकिन आपको लोगों से रिकम्पेंसेशन नहीं चाहिए होगी, आपका सारा मामला अल्लाह से जाकर जुड़ जाएगा। तो लूत अलैहिस्सलाम ने भी उनको अल्लाह की तरफ दावत दी, और फिर उनको वाज़े तौर पर जो उनका गुनाह था, लगी लिपटी नहीं रखी, जो उनका गुनाह था उनको वाज़े तबलीग की कि ये जो तुम अमल करते हो ये अल्लाह की नजर में पसंदीदा नहीं है। सूरत शुअरा की ही आयत नंबर 165 और 166 में आपको ये तबलीग का अंदाज मिलता है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तबलीग। कोई नहीं कि अच्छा अगर हम एथीज्म के टॉपिक पर बात करें तो हम एथीज्म का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। क्यों भाई, किसका डर है आपको, किस चीज का डर है? क्यों नहीं एथीज्म का हम नाम इस्तेमाल कर सकते या टाइटल इस्तेमाल कर सकते? जब आप लोगों को बता रही हैं कि एथीज्म की इस्लाम में, एथीज्म की इंसानियत में कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर डरते किस बात से हैं कि हम एथीज्म का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते? इस खौफ को अपने अंदर से घुरज के निकाल दें, मांगे अल्लाह से ईमान की ताकत कि अल्लाह हम दीन को दीन की ग्राउंड्स पर आगे लेकर चल सकें। लूत अलैहिस्सलाम ने ब्लैक एंड व्हाइट तबलीग की, सूरत शुअरा आयत नंबर 165-166, तुमको दुनिया में मर्द ही मिले हैं अपनी सेक्सुअल अर्ज को पूरा करने के लिए, वतज़रूना मा खलक लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, और तुम उस चीज को छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारे स्पाउसेस में क्रिएट किया है, जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्रिएट किया है तुम उसको छोड़ देते हो। यहां पर आया है वतज़रूना, और तुम सब छोड़ देते हो मा खलका। आप में से जो लोग अरबी ग्रामर पढ़ते हैं, मा यहां मौसूला है, वाहिद का मुजक्कर का, एक और वाहिद मुजक्कर का इसम मौसूला आता है, कौन सा वाला? मन आता है। तो जब आप ग्रामर पढ़ती हैं तो आपको पता चलता है कि दोनों वाहिद मुजक्कर हैं। फर्क कब किया जाता है? जब दोनों वाहिद हैं, दोनों मुजक्कर हैं, माँ और मन दोनों इसम मौसूला हैं, तो अलग अलग क्यों अल्लाह ताला ने जुबान में रखे? एक आता है आकिल के लिए, आकिल मखलूकात, और एक बाकी तमाम मखलूकात जिनको गैर आकिल मखलूकात कहा जाता है। सो यहां इस आयत में देखें, वतज़रूना और तुम छोड़ देते हो मा खलक लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, जो उस चीज को छोड़ देते हो जो चीज तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़ों में तख्लीक की है। सो अगर मां आया है स्पाउस के लिए, मर्द के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर, अगर मां आया है स्पाउस के लिए तो मन क्यों नहीं आया? मां आता है गैर आकिल के लिए, तो स्पाउस गैर आकिल है. देखें, अगर मन आता तो होता आकिल के लिए. आकिल मखलूकात कितनी कंसिडर होती हैं? तीन, इंसान, जिन, फरिश्ते. यहां मन नहीं आया. तो स्कॉलर्स ने कहा कि इसका मतलब है कि स्पाउस के लिए नहीं आया. स्पाउस के लिए नहीं आया. मा खलकलकुम, किस चीज के तखलीक करने की बात हो रही है? वो कहते हैं कि ये जो मा आया है, ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए आया है. इट्स एन इमोशन, इट्स अ बिल्ट इन इमोशन. औरत के लिए नहीं आया, मर्द के लिए नहीं आया. अगर औरत या मर्द के लिए आता तो मां नहीं आता, मन आता. मां खलकलकुम आया है. सो अल्लाह ने जो तुम्हारे स्पाउस में तुम्हारे लिए सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन क्रिएट की है, ये मतलब है यहां पे. क्लियर हुआ? उस अर्ज की बात है जो अल्लाह ने कहां तखलीक की है, नेचुरल भी हो और विद इन निकाह के दायरे में हो, एक नर और मादा के दरमियान में हो, मर्द और औरत के दरमियान में हो. उसकी बात है कि जो अल्लाह ने तखलीक किया है तुम्हारे जोड़ों में, तुम उसको छोड़ देते हो. तदरूना, तुम उसको छोड़ देते हो. बल अंतुम कौमुन आदून, बल्कि तुम सब हद से बड़ी हुई कौम हो. अब आगे आयत नंबर 29 सूरतुल अनकबूत, ताकि आपका किस्सा जो है वो आगे कंटिन्यू करे. इस आयत के अंदर आपको कौम लूत के तीन क्राइम्स नजर आएंगे जो कुरान ने मेंशन किए हैं, तीन जुर्म. पहला क्या है? आयत नंबर 29 सूरतुल अनकबूत, आ इन्नकुम लता तूनर रिजाला, यानी क्या तुम मर्दों के पास आते हो? किस काम के लिए? जिस्मानी ताल्लुक के लिए. मर्दों के साथ क्या तुम जिस्मानी ताल्लुक के लिए आते हो? इस बात को यहीं पे क्लियर कर लें, कौम लूत होमोसेक्सुअलिटी के मर्ज में दो तरह मुबतला थे. ये लोग अपनी पूरी कंसेंट से भी दो मर्द ये काम किया करते थे, पूरी रजा के साथ जबरदस्ती भी ये काम किया करते थे, यानी वो जिना भी करते थे. इसमें जबरदस्ती किसी मर्द को पकड़ के उसके साथ इस अमल को किया करते थे. सो एक इनका क्राइम आया कि ये मर्दों के साथ अपनी जो शहवत है उसको पूरा करते हैं मर्द होते हुए. अब जो ये मैंने आपसे कहा कि मुफस्सरीन कहते हैं ये दोनों तरह ये काम करते थे, यानी अपनी कंसेंट से भी करते थे और जिना के तौर पर पकड़ के जबरदस्ती भी करते थे, इसी आयत के अगले जुमले से उन्होंने ये जो मीनिंग है इसको निकाला है. आगे आ रहा है जो दूसरा क्राइम है इनका, वतक़ताउना सबीला, तुम रास्तों को टुकड़े टुकड़े करते हो या काटते हो. आसान उर्दू में वतक़ताउना सबीला, तुम रास्तों को काटते हो. तक़ताउना सबीला के दो मीनिंग्स किए गए हैं. अगर आप इसको पिछले से कनेक्ट करें, और मैंने अभी आपसे कहा कि वो जिना भी किया करते थे, जबरदस्ती पकड़ के भी इस मर्ज को, इस गुनाह को किया करते थे, तो मुफस्सरीन ने लिखा है कि क्योंकि ट्रेड रूट्स पर रहते थे, काफले यहां से आते जाते थे. आपको पिछली क्लास में बताया था कि काफले यहां पर आकर स्टे किया करते थे, रुका करते थे. ये भी पता चलता है तारीख से कि कौम लूत के जो मर्द होते थे वो बाज़ औकात काफलों के रास्ते में आकर बैठ जाया करते थे, रुकावट क्रिएट करते थे या काफलों पर एम्बुश करते थे, लूट मार भी किया करते थे. तो अब जमीन पर फसाद भी फैलाते थे, तक़ताउन सबील, इस तरह से रास्ता काटते थे लोगों का, और फिर जो इस सूरत हाल में इनको लड़के या मर्द मिलते थे उससे होमोसेक्सुअलिटी का मर्ज या गुनाह जबरन जिना के तौर पर किया करते थे. कंसेंट से तो करते ही थे, अतातून रिजाला कंसेंट से करने के लिए आया. दूसरी राय दी जाती है कि जिना करते थे, वो तक़ताउन सबील से भी मुफस्सरीन ने डिराइव किया है. फिर इसका दूसरा मफहूम जो तक़ताउन सबील का है, वो कहते हैं कि सबील से मुराद यहां पर इस आयत में सूरह अनकबूत की फितरत की राह से है. यानी सबील से मुराद क्या है? एक आपका नेचुरल इंक्लिनेशन, फितरत की राह. यानी फितरत अल्लाह ने क्या बनाई है? मर्दों को औरतों की तरफ नेचुरली इंक्लिनेशन या अट्रैक्शन होगी. वतक्तऊन सबील, तुमने उस नेचुरल अट्रैक्शन को बदल दिया. एक इसका यह मफहूम किया जाता है. सो पहला मफहूम, कंसेंट के साथ होमोसेक्सुअलिटी का मर्ज करना. उसी में पहले में ही यह भी आपको बता दिया कि वो जबरदस्ती भी किया करते थे. दूसरा क्राइम, काफलों के ट्रेड रूट्स पर बैठते थे, जिसमें से एक पॉइंट निकलता है कि वो जिना के साथ फिर काफलों के मर्दों के साथ जबरन ये काम किया करते थे. और दूसरे क्राइम में ही आपको मैंने दूसरा मफहूम मुफस्सिर का बता दिया कि वो कहते हैं तक्ताऊन सबील का मतलब है कि वो नेचुरल अट्रैक्शन को अपनी हविस की वजह से, अपनी इंक्लिनेशन की वजह से बदल देते हैं. जो तीसरा गुना या तीसरा क्राइम सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 29 में मेंशन किया गया है कौम लूत का, वो है वतातूना फी नादी कुमुल मुंकर. अपनी गैदरिंग्स में तुम ये अमल करते हो. नादी अरबी जुबान में क्लब को कहते हैं, CLUB. कौम लूत के नाइट क्लब्स थे जिनमें एक दूसरे के सामने होमोसेक्सुअलिटी का मर्ज ओपनली किया जाता था. इसलिए ये कौम अपने इस गुनाह के ऊपर पर्दा नहीं डालती थी. आपको बताया था ये कौम अपने इस गुनाह को फ्लॉन्ट किया करती थी, अपने इस गुनाह पर प्राउड फील किया करती थी. और ये तीन क्राइम्स आपको सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 29 में इस कौम के रेफरेंस में मिलते हैं. लूत अलैहिस्सलाम के लिए आता है कि लूत अलैहिस्सलाम 30 साल मेहनत के साथ इस कौम में तबलीग करते रहे और 30 सालों में ये लोग इस अमल में रुके नहीं रसूल की तबलीग पर, बल्कि बढ़ते चले गए. मुफस्सरीन कहते हैं कि जब लूत अलैहिस्सलाम फलस्तीन से हिजरत करके यहां आए थे सो उनका निकाह इसी कौम की औरत से हुआ था. ज्यादा चांसेस यही हैं कि जो उनकी बीवी थी उनका ताल्लुक इसी कौम से था. इन 30 साल के अरसे में लूत अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ था और उनकी दो बेटियां थीं, जिसकी आपको तफसीलात इस किस्से में मिलती हैं. लूत अलैहिस्सलाम सबर के साथ इस कौम को शिर्क से, बाकी गुनाहों से और इस होमोसेक्सुअलिटी के मर्ज से रोकते रहे, यहां तक के कौम ने हुज्जत तमाम कर दी. जो आपको सूरह अनकबूत की आयत नंबर 29 में मिलता है, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये तीन क्राइम्स हैं तो कौम ने क्या कहा? फमा काना जवाब कौमिही, कौम का जवाब क्या था? इल्ला अनका लुतीना बि अज़ाबिल्लाह. उस कौम ने क्या कहा कि ठीक है जो तुम कहते हो, ले आओ हम पर अल्लाह का अजाब, इन कुंता मिना सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो. देख लेते हैं कौन सच्चा है. कौम समझ रही होगी 30 साल से तो यही बोल रहे हैं, सो आज पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है. खुद इस कौम ने अपने लिए मुश्किल की. बाज उलमा ने यह बात अपनी किताबों में मेंशन की है. वो कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह से, लूत अलैहिस्सलाम के रब से सजा खुद मांगी थी, वरना 30 साल से लूत अलैहिस्सलाम इसी कौम में मौजूद थे जो मासियत में डूबी हुई थी होमोसेक्सुअलिटी के. और लूत अलैहिस्सलाम खामोशी से दावत का काम करते जा रहे थे, समझाते जा रहे थे, खुद को बचाया हुआ था, अपनी हिफाजत की थी ईमान, इल्म और अमल से, और कौम को कॉन्स्टेंटली तबलीग करते जा रहे थे. क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम सबर से तबलीग कर रहे थे तो अल्लाह भी पेशेंट था, अल्लाह की तरफ से नहीं आया सजा का मामला. रसूल बिल्कुल सबर के साथ तबलीग कर रहे थे और उसी कौम की जो फिल्थ में मुबतला थी उसकी तरबियत की कोशिश कर रहे थे. तो तरबियत आसान काम नहीं होता, बाज़ औक़ात आप जिन लोगों पर कई कई साल मेहनत कर रहे होते हैं, आउटकम कुछ नज़र नहीं आता, कुछ आउटकम नज़र नहीं आता। और ये अंबिया का हौसला और सब्र होता था कि वो उसी कौम में रहते थे, उनके गुनाहों को देखते रहते थे और फिर हिम्मत के साथ तबलीग करते रहते थे। मगर जब उन्होंने सज़ा मांगी तो फिर अल्लाह के सामने कौम की तरफ से हुज्जत आ गई। वरना याद रखें, उलमा कहते हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 108 में आता है, वमल्लाहु युरीदु जुल्मल लिल आलमीन। अल्लाह जहानों पर जुल्म का इरादा नहीं रखता, इंसान अपने गुनाह से खुद हुज्जत कायम करता है। जब भी बाज लोग जब सवाल करते हैं कि जब अल्लाह को पता है कि मैं अल्टीमेटली गुनाहगार ही मर जाऊंगी, तो फिर अल्लाह ताला ने इतना सारा ये सब स्टेज क्यों बनाया, या मैं मेहनत क्यों करूं जब अल्टीमेटली मैंने जो है वो जहन्नुम में जाना है। इसीलिए आपको स्कॉलर्स उसका जवाब देते हुए क्या मिलते हैं, अल्लाह अपने इल्म की बेसिस पर जानता है किसका इंक्लिनेशन खैर की तरफ होगा, किसका शर की तरफ होगा, लेकिन अल्लाह अपने इल्म की बेसिस पर किसी को सजा नहीं देता। अल्लाह इंतजार करता है जब तक कि वो बंदा अपने अमल से साबित ना कर दे कि उसने अपने लिए खैर लिखवाया या शर लिखवाया। तो यही मामला यहां इस कौम के साथ भी हुआ। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को सबर के साथ तबलीग का जो हिकमत थी और स्टेमिना था वो दिया हुआ था, यहां तक कि कौम ने खुद अपने लिए सजा की जो तजवीज थी वो दे दी। सो ये मामला कौम लूत का एक तरह से आपके सामने सिनॉप्सिस आ गया। अल्लाह ताला इल्म और इल्म का फहम और उस फहम को अमल में लाना हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह ताला आने वाले दिनों में खैर हम सबको अता फरमाए। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़ानी व इयाकुम बी आयाती व ज़िक्र अल हकीम। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।